विशाल सागर पर सेतु का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। नल नील वानरों द्वारा लाए गए पत्थरों को काट छांट कर ऐसा आकार देने लगे जिससे वो पानी में डूबते ही नहीं थे। वानर राज सुग्रीव निगरानी के कार्य में लगे थे और हनुमान बड़ी बड़ी चट्टानों को इकट्ठा करने में जुटे थे। दूसरी ओर लंकेश रावण राम की सेना का सामना करने की तैयारी में लग गया। पर जब ये मंदोदरी को पता लगा तो वो व्याकुल होकर अपने पति रावण के पास पहुंची।
महाराज, मैंने समय समय पर आपको सावधान किया है। भले ही आपने मेरी बात नहीं मानी, पर आपको सलाह देना मेरा धर्म है। उसी धर्म से मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप श्री राम से वैर ना करें। यदि आपको विश्वास ना हो, विभीषण से बात कर लें। विभीषण श्री राम की शक्ति को भली भांति जानते हैं।
क्या तुम नहीं जानती कि संपूर्ण देवलोक रावण के चरणों की वंदना करता है? यदि कोई देवता मुझे परामर्श नहीं दे सकता तो ये मूर्ख विभीषण कौन है?
यदि मेरी बातों से आपके सम्मान को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहती हूं, किंतु कृपा करके आप देवी सीता को सम्मान के साथ श्री राम के पास पहुंचा दें। इससे लंका के सम्मान की रक्षा तो होगी ही, भविष्य में होने वाला एक भयानक युद्ध भी टल जाएगा।
मंदोदरी, नीति अनीति, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का कुछ भी ज्ञान है तुम्हें? किसने कह दिया तुमसे कि राम परम शक्तिशाली है, राम में ईश्वरीय शक्तियां हैं? किसने कहा?
ऐसी शक्तियों की अनुभूति स्वतः हो जाती है स्वामी, आप माने ना माने, लेकिन मैंने अपना दायित्व पूरा किया है। शेष नियति को कोई नहीं टाल सकता। मैं जा रही हूं स्वामी, आप जैसा चाहें वैसा करें।
ये जय जयकार का समय नहीं है। दशानन रावण को चुनौती दी है दो तुच्छ वनवासियों ने। मैं अपने मंत्रियों से जानना चाहता हूं कि उनका सामना करने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं।
लंकेश, जब हनुमान नाम का वानर आया था तो उस समय हम लोग सावधान नहीं थे, किंतु आज हम सावधान हैं। यदि आप आदेश दें तो हम अभी उन दोनों वनवासी कुमारों के सिर काट के आपके चरणों में डाल दें।
हाँ महाराज, एक बार उन कुमारों का वध हो गया तो वानर तो कभी लंका की ओर देखने का साहस भी नहीं कर सकेंगे। वैदेही भी राम की मृत्यु का समाचार सुनकर लंका की राजरानी होने के लिए विवश हो जाएगी।
तुमने सत्य कहा कंपन, यदि हम उनका वध अभी कर दें तो भविष्य में होने वाला युद्ध तो टलेगा ही, हमारा प्रतिशोध भी पूरा होगा। मैं मैं तो उनका वध उसी समय कर देता जब सीता का हरण करने गया था, और मैं उन्हें उतना ही व्याकुल देखना चाहता था जितना मैं अपनी बहन शूर्पनखा को देखकर हुआ था। मैंने जो चाहा था अब वो पूरा हो चुका होगा। सीता के लिए रक्त के आंसू रोए होंगे वो वनवासी, और अब उनका वध होगा। वध!
क्षमा करें तात, ये हर्ष का विषय है कि लंका में ऐसे योद्धा हैं जो शत्रुओं से भयभीत नहीं है। मैं उन वीरों का अभिनंदन करता हूं, किंतु महाराज रावण, जिस युद्ध की हम तैयारी कर रहे हैं क्या वो नीति संगत है? क्या इस युद्ध में लंका का कोई भला होने वाला है? क्या ये युद्ध किसी धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है?
बंद करो ये प्रलाप।
ये प्रलाप नहीं है राजन, श्री राम आपका राज्य छीनने नहीं आ रहे हैं। आपने उनकी पत्नी का हरण किया है और वे अपनी पत्नी को आपके बंधन से मुक्त कराने आ रहे हैं, क्या यह उनका अपराध है?
हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है विभीषण, फिर भी सुन लो। जिस राम का तुम गुणगान कर रहे हो उसने तुम्हारी बहन शूर्पनखा का अपमान किया है। खर और दूषण तुम्हारे भी भाई थे विभीषण, राम ने उनका वध किया है। यदि तुम केवल ये मानते हो कि हमने सीता का हरण भोग विलास के लिए किया है तो ये तुम्हारी भूल है। हमने प्रतिशोध की भावना से शत्रु की पत्नी का हरण किया है और ये करना हमारा धर्म था।
आप नहीं जानते हैं महाराज कि शूर्पणखा ने राम के साथ क्या किया था।
यदि तुम जानते हो तो बताओ, कौन सा अपराध किया था शूर्पनखा ने? कौन सा अपराध किया था मेरे भ्राताओं ने?
शूर्पनखा ने राम से बलपूर्वक विवाह करना चाहा था और देवी सीता की हत्या करने का प्रयास किया था। खर और दूषण सेना लेकर स्वयं राम से युद्ध करने गए थे और राम ने जो भी किया अपनी प्रतिष्ठा और अपने स्वाभिमान के लिए किया, और वो आज भी जो कर रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए ही कर रहे हैं।
विभीषण की बातें सच थी, पर उसके एक एक वचन दशानंद के सीने पर बर्छे जैसे चुभ रहे थे। वो तो अपनी शक्ति के मद में ऐसा चूर था कि उसे अधर्म ही धर्म जान पड़ता था, पर विभीषण को पूरा विश्वास था कि वो अपने भाई को समझा सके। पर कितना बल है उनके इस विश्वास में?
किसने दी तुम्हें ये सब बुद्धि? किसने दिया ये ज्ञान? कहां से सीखी तुमने ये नीति? क्या तुम मेरे समक्ष राम की महानता सिद्ध करने आए हो? तुम्हारा भ्राता हूं, इसीलिए बार बार तुम्हें क्षमा करता हूं, और तुम बार बार अपनी मर्यादा की सीमाएं पार कर जाते हो। तुम नहीं जानते कि इसका दंड क्या हो सकता है? तुम्हारी तरह कायर दुर्बल नहीं है रावण। रावण ने अपनी वीरता का डंका संपूर्ण त्रिलोक में पीटा है और आज भी उसकी वही वीरता राम को चुनौती दे रही है। रावण युद्ध में समर्थ है विभीषण, और वो युद्ध अवश्य करेगा।
हे दशानंद, मुझे आपकी शक्ति और वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु मैं लंकावासियों के हित के लिए कह रहा हूं। आप स्वयं अपने हाथों से लंकावासियों की मृत्यु का आयोजन क्यों कर रहे हैं? आपका भला इसी में है कि सीता को सम्मान के साथ श्री राम के पास वापस भेज दें, अन्यथा आपकी पराजय सुनिश्चित है। लंकेश,
विभीषण!
प्रभु, सेतु बनाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। नल और नील आधे से अधिक समुद्र तक सेतु बांध भी चुके हैं।
मैं कार्यस्थल से ही लौट रहा हूं हनुमान। जानते हो, मेरी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी, जो छोटे छोटे कंकड़ अपने मुंह में दबाए सेतु बनाने में अपना योगदान दे रही थी।
सब अपनी आस्था से इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं प्रभु। सबका लक्ष्य एक ही है कि जितनी जल्दी हो सके आप लंका पहुंचें और रावण पर विजय प्राप्त करें।
जिस कार्य में इतने प्राणियों की आस्था है वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा हनुमान।
सेतु निर्माण का कार्य प्रगति पर था। हनुमान बड़े उत्साह से बड़ी बड़ी चट्टाने लेकर आ रहे हैं। जब आसपास के सारे पर्वत सेतु निर्माण के कार्य में लग गए तब हनुमान पर्वत की खोज में दूर निकले। उन्हें विशाल गोवर्धन पर्वत दिखाई पड़ा, किंतु जैसे ही उन्होंने पर्वत को उठाना चाहा, गोवर्धन पर्वत ने साकार रूप धारण कर हनुमान को रोक दिया।
ये मुझे कहां ले जा रहे हैं पवन पुत्र? मैं इस क्षेत्र का अकेला पर्वत हूं। इस क्षेत्र के वन और कृषि मुझ पर ही टिकी हुई हैं। मेरे कारण ही इस क्षेत्र में वर्षा होती है। मुझे ले गए तो यहां रहने वाले सभी प्राणी भूखे मर जाएंगे।
पर्वतराज गोवर्धन, आप श्री राम की सेवा में चल रहे हैं और श्री राम अनीति और अत्याचार के विरुद्ध रावण से युद्ध करने जा रहे हैं। आपकी भागीदारी से धर्म और न्याय को बल मिलेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पुण्य कार्य में अवश्य भाग लें।
किंतु मुझ पर आश्रित जन समुदाय का क्या होगा हनुमान?
जन समुदाय की रक्षा तब होगी जब धर्म की रक्षा होगी, और मैं वचन देता हूं कि मैं आपको श्री राम के दर्शन कराऊंगा।
श्री राम के दर्शन? हे ईश्वर, भला ऐसा संयोग हमें कहां प्राप्त होगा? चलिए हनुमान, चलिए शीघ्रता से चलिए, ले चलिए मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु ले चलिए।
मेरा अभिवादन स्वीकार करे तात।
आज पुनः आए हो मुझे परामर्श देने?
क्षमा करे भ्राता दशानन, मेरा उद्देश्य आपका विरोध करना कभी न था। आपके भ्राता के रूप में या राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो भी कर रहा हूं आपके और लंका के हित में कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात शांत मन से सुने और उस पर गंभीरता से विचार करें।
क्या कहना चाहते हो?
जब से आप देवी सीता का हरण कर लंका ले आए हैं तब से कई अशुभ घटनाएं घटित हो रही है महाराज।
कौन सी अशुभ घटनाएं?
राजकुल की एकता खंडित हो गई है। हनुमान ने पूरी लंका जला दी और अब लंका पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं।
ये सब तुम्हारे लिए अशुभ संकेत होंगे विभीषण, किंतु हमारे लिए बस एक नई चुनौती से अधिक कुछ नहीं।
चाहे जो भी हो, हानि तो लंका की ही होगी ना भ्राताश्री। मैं आपसे धर्म अधर्म और नीति अनीति की बात नहीं कर रहा हूं। आज केवल और केवल लंका की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। यदि हमारी यह नगरी बची रही तो आपको ही लाभ होगा। एक सीता को लौटा देने में आपकी क्या हानि होगी लंकेश?
अपनी तुच्छ बातों से हमारी नीतियां बदलने का प्रयास मत करो विभीषण। इस विषय में हम कोई भी बात राज्यसभा में ही करेंगे। तुम जा सकते हो।
स्वामी, अब कौन सी चिंता खाई जा रही है आपको? मेरे बार बार कहने के बाद भी आपने लंकापति का विरोध किया। कहीं ऐसा ना हो कि भरी सभा में लंकापति आपका अपमान करे और आपको लंका छोड़नी पड़े।
न्याय के लिए मैं लंका भी छोड़ने के लिए तैयार हूं शर्मा। यदि वो मेरे प्राण भी ले ले तो भी मैं अपने विचारों पर अटल रहूंगा। मुझे कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं।
विभीषण के अथक प्रयासों से लंकापति रावण के आदेश पर विशेष सभा बुलाई गई। लंकेश की नीतियों पर विचार विमर्श हुआ। विभीषण को छोड़कर कोई ऐसा नहीं था जो लंकेश का विरोध करता, और लंका के राज दरबार में एक बार फिर विभीषण अकेले पड़ गए, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर थे और लंका तो अधर्म की नगरी थी।
ज्ञान धर्म भरी सन्मत बानी, काहे विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन गरज उठा फिर, सुनत दशानन गरज उठा फिर, खल तो ही मृत्यु बुलावन ठानी।
रामायण मैं काल लंका विजय के पहले ही श्री राम की सेना के सामने अनंत सागर चुनौती देते हुए उछाल मार रहा था। पर राम नाम के सहारे सागर तो क्या, भव सागर भी पार हो जाता है। सेतु निर्माण का कार्य इतनी गति से हुआ कि कुछ ही समय में पत्थर और चट्टाने कम पड़ने लगे। तब हनुमान सेतु निर्माण के लिए पर्वतराज गोवर्धन को ही लेकर सागर की ओर उड़ चले। उधर सागर पार लंकापति रावण ने श्री राम के विरुद्ध अपनी युद्ध नीति पर उधेड़ बुन आरंभ कर दी। विभीषण ने कितना प्रयास किया कि वो सीता को लौटाकर श्री राम से क्षमा मांगे, पर विनाश की इस घड़ी में रावण की बुद्धि उसका साथ ही नहीं देती थी। और तब विभीषण के पास श्री राम की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा।
लगता है इसी पर्वत पर श्रीराम की छावनी है।
हाँ महाराज विभीषण, चारों दिशाओं में सैनिक ही सैनिक दिखाई दे रहे हैं। ये सभी अवश्य ही श्रीराम की सेवा में हैं।
इसका अर्थ है हम भी जल्दी ही श्रीराम की सेवा में पहुंचने वाले हैं।
प्रभु प्रभु, लंकेश का कोई दूत आ रहा है। वो इधर ही आ रहा है प्रभु।
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है सैनिक, मैं देखता हूं उसे।
आप कष्ट ना करें कुमार लक्ष्मण, मैं देखता हूं। लगता है उसका अंत मेरे हाथों ही होना है।
क्षमा करें महाराज सुग्रीव, मेरी गदा कई दिनों से शांत है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर देख लूं। वो नराधन भी मारा जाएगा और इस गदा को भी शत्रु के दर्शन हो जाएंगे।
नहीं हनुमान, हो सकता है वो किसी अन्य कार्य से आ रहा हो। सत्य को जाने बिना किसी प्रकार का बल प्रयोग उचित नहीं है। वानराज सुग्रीव, आप जाइए, आप स्वयं उनसे मिलकर आइए।
जो आज्ञा प्रभु।
चलो उस ओर चलकर देखते हैं, लगता है उसी ओर श्रीराम से भेंट होगी।
हाँ तो चलिए उसी ओर चलते हैं।
ठहरो, जहां हो वहीं रुक जाओ।
लगता है श्रीराम का कोई सेनापति है।
हाँ महाराज विभीषण, वो जो भी है इधर ही आ रहा है।
कौन हो तुम लोग?
क्रोध न करें, हम श्रीराम के शत्रु नहीं मित्र हैं।
लंका से आने वाला श्रीराम का मित्र नहीं हो सकता।
ऐसा ना कहें, लंका में सभी अधर्मी नहीं है, वहां भी श्रीराम के भक्त हैं।
श्रीराम के भक्त? सच सच बताओ तुम लोग हो कौन?
मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। मैं अपने बड़े भाई रावण के कृत्य से दुखी होकर श्री राम के शरण में आया हूं।
क्या? परंतु परंतु मैं कैसे विश्वास करूं कि आप सचमुच प्रभु की शरण में आए हैं।
आप बस श्रीराम से मेरी भेंट करा दें, वो सब कुछ समझ जाएंगे।
ठीक है, मेरे साथ आइए।
सदरते ही आगे करीबानर चले जहां रघुपति करुणा कर दूरी ही ते देखी दो भ्राता नयनानंद दान के दाता।
प्रभु, लंकापति रावण के सहोदर भ्राता विभीषण आपकी शरण में आए हैं।
ये क्या कह रहे हैं वानर राज? अवश्य ही रावण हमारे साथ कोई छल कर रहा है। वो अपने भाई को यहाँ भेजकर हमारी सेना की शक्ति जानना चाहता है।
मुझे उनकी बातों से ऐसा नहीं लगा कुमार लक्ष्मण, फिर भी आप दोनों भ्राता विचार कर लें।
नीति के अनुसार हमें उनसे अवश्य मिलना चाहिए बानादास सुग्रीव।
नीति तो ये भी कहती है भैया कि शत्रु पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक तो राक्षस वैसे ही क्रूर और कपटी होते हैं, दूसरे ये रावण का भाई है, हम इस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं?
शत्रु यदि शरण में आए तो उसे अवश्य अपनाना चाहिए लक्ष्मण। वानरराज सुग्रीव, हम उनसे अवश्य मिलना चाहेंगे।
जो आज्ञा प्रभु। उन्हें अंदर भेजो।
प्रभु श्री राम की जय हो। मैं विश्रवा पुत्र लंकेश रावण का अनुज विभीषण आपकी शरण में आया हूं। आप मेरा उद्धार करें नाथ।
अवश्य विभीषण, आपकी विनम्र वाणी सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप अपने भ्राता रावण की नीतियों से दुखी हैं।
आपने बिल्कुल ठीक समझा प्रभु। ब्रह्मा से वरदान पाकर लंकेश रावण स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगे हैं। उन्हें भ्रम हो गया है कि वो अमर्त्य हैं। देव, दानव, नाग, किन्नर, उन्हें कोई नहीं मार सकता। उनका पुत्र मेघनाद भी उनके समान ही अभिमानी हो गया है। वो इंद्र को परास्त कर इंद्रजीत बन बैठा है प्रभु। पूरी लंका ऐसे ही अभिमानियों से भरी पड़ी है। मेरी भावनाएं समझने वाला कोई नहीं है वहां, इसलिए आप मुझे शरण दे प्रभु श्री राम। आपकी सेवा में मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु।
विभीषण का निवेदन सुनकर सब सोच में पड़ गए। राम जानते थे कि लक्ष्मण से कहो कि सूरज पश्चिम से निकल आया तो वो शायद मान ले, पर रावण के भाई के राम की शरण में आने की बात वो कभी नहीं मानेंगे। यही सोचकर श्री राम समझ नहीं पा रहे थे कि विभीषण को शरण दें या उसे वापस भेज दें।
लक्ष्मण, विभीषण न्याय की आशा से हमारे पास आए हैं, ऐसे में हमें इनकी भावनाओं की रक्षा करनी चाहिए।
मेरे लिए ये मानना कठिन है भैया, पर यदि आपका यही निर्णय है तो मैं इसका स्वागत करता हूं।
विश्रवा पुत्र विभीषण, मैं आज दशरथ नंदन राम, दसों दिशाओं, इस विशाल समुद्र और समस्त ग्रह नक्षत्रों को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं रावण का उसके पुत्रों, मंत्रियों और उसके समस्त योद्धाओं सहित वध करके तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। तुम ही भविष्य के रक्षेंद्र होगे, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है।
श्री राम की जय।
धन्य है आप श्री राम प्रभु, धन्य है आप। यदि आपने ऐसी प्रतिज्ञा ले ही ली है तो आज मैं परमपिता ब्रह्मा का वंशज पुलत्स्य पौत्र विश्रवा पुत्र विभीषण आपके चरणों की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि लंकेश का अंत करने में मैं पूरे तन और मन से आपकी सहायता करूंगा।
विभीषण से मेरा विरोध वैचारिक है मंदोदरी। वो चाहे जो भी करे, मैं उसका भला ही चाहूंगा।
पहले तो आपने उन्हें शत्रु बना लिया और अब उनके भले की बात कर रहे हैं।
मैं विभीषण का शत्रु नहीं हूं मंदोदरी, वो मेरा भ्राता है और सदैव भ्राता ही रहेगा।
जब उनके प्रति ऐसी सोच है तो आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी?
संबंधों की मर्यादा और राजनीति दोनों में बहुत अंतर है मंदोदरी। विभीषण नहीं जानता है कि हमने ये लंका कैसे बसाई है। तीनों लोकों से लड़ा हूं मैं इस लंका के लिए, रक्ष संस्कृति के लिए, तब बना हूं मैं लंकेश। और विभीषण ने लंकेश की गरिमा और मर्यादा दोनों के साथ,
गरिमा और मर्यादा का ध्यान होता आपको तो देवी सीता का हरण नहीं करते। शूर्पणखा के झूठ और बहकावे में आकर
तुम्हें शूर्पणखा के आंसू और उसकी पीड़ा झूठ लगती? उसके मन की व्यथा का भी अनुमान नहीं है तुम्हें?
आप ये मत भूलिए महाराज कि शूर्पणखा एक नारी है और एक नारी के मन की व्यथा एक नारी से अधिक कोई नहीं समझ सकता।
यदि तुमने उसकी पीड़ा समझी होती तो ऐसा लांछन नहीं लगाती उस पर।
वो देवी सीता को मार कर राम से विवाह करना चाहती थी स्वामी। जैसा राम के साथ हुआ वैसा आपके साथ होता तो क्या आप सहन कर सकते थे इसे?
ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। शूर्पणखा का सच मुझसे अधिक कोई और नहीं जान सकता। उसके मन में राम के लिए प्रेम नहीं, प्रतिशोध है, और उसका प्रतिशोध उसका भ्राता लेगा। जैसे तुम्हें अपने पति पर गर्व है, वैसे ही शूर्पणखा को अपने भ्राता लंकेश पर गर्व है, और मैं उसके इस गर्व को आहत नहीं होने दूंगा।
सभी श्री राम भक्त ध्यान दें, सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और श्री राम का आदेश है कि अब और चट्टानों और पत्थरों को इकट्ठा ना किया जाए। जय श्री राम।
क्या हुआ महावीर हनुमान, आपने मुझे यहाँ क्यों रख दिया?
क्षमा करें पर्वतराज गोवर्धन, जिस सेतु निर्माण के लिए मैं आपको ले जा रहा था वो तो पूरा हो चुका है।
किंतु आपने मुझे श्रीराम के दर्शनों का वचन दिया था, क्या आप अपना वचन भूल गए?
मैं अपना वचन कभी नहीं भूलता पर्वतराज गोवर्धन, पर मैं प्रभु श्रीराम के आदेश का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता।
ये कैसा धर्म संकट है महावीर, यदि मुझे श्रीराम के दर्शन नहीं होंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मुझे श्रीराम की सेवा से वंचित न करें महावीर। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं।
ऐसा न करें पर्वतराज, मैं प्रभु श्रीराम से आपके लिए उचित आदेश लेकर आता हूं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। जय श्रीराम।
सेतु का कार्य पूरा होने से सभी राम भक्त आनंद से भर गए। सारी सेना वहीं समुद्र के तट पर खुशी से नाचने लगी। श्री राम ने नल और नील को सेतु निर्माण में सहयोग के लिए हृदय से लगा लिया। किंतु ये नल और नील भी जानते थे कि समुद्र पर सभी पत्थर श्री राम की कृपा से तैर गए थे। अभी श्री राम की जय जयकार ही हो रही थी कि तभी महावीर हनुमान वायु मार्ग से श्री राम के पास पहुंचे।
श्री रघुवीर प्रताप दे सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जे राम तजी ते मति मंद जे राम तजी भज ही जाए प्रभुवान रामायण।
मैं काल श्री राम की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता, और प्रभु श्री राम ने तो अवतार ही भक्तों के कष्ट हरने के लिए लिया था, तो भला वो उन पर कृपा कैसे नहीं करते। बस प्रभु की कृपा होने की देर थी कि भक्तों ने अथाह और अनंत सागर पर सेतु बांध दिया। परम शक्तिशाली सागर का घमंड चूर कर उस पर सेतु बंधन के महान कार्य के लिए श्री राम ने अपने सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद दिया और सभी मिलजुल कर समुद्र पार करने की योजना बनाने में जुट गए। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी महावीर हनुमान वायु की गति से श्री राम के सन्मुख उतरे।
जय श्री राम।
हनुमान तुम यहां अचानक, क्षमा करे प्रभु, मुझसे एक भूल हो गई है। कैसी भूल हनुमान? भला तुमसे भी कभी कोई भूल हो सकती है?
प्रभु मैंने पर्वतराज गोवर्धन को वचन दिया था कि उन्हें आपके दर्शन कराऊंगा, परंतु
मुझे पता है हनुमान, सेतु का कार्य पूर्ण हो जाने के कारण तुम उन्हें यहां नहीं ला सके।
आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु, पर अब मैं घोर धर्म संकट में पड़ गया हूं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, आपका आदेश मानूं क्या आपके भक्त की विनती?
तुम्हारा दिया गया वचन हमारा वचन है हनुमान। जाओ पर्वतराज से कह दो कि उन्हें केवल हमारे दर्शन ही नहीं होंगे, बल्कि हम द्वापर युग में उनके मित्र बनकर उनके साथ भी रहेंगे।
मैं कुछ समझा नहीं प्रभु।
हम द्वापर युग में मुरली मनोहर के रूप में अवतार लेंगे हनुमान, तब पर्वतराज गोवर्धन को हमारे दर्शन होंगे। हम ब्रज के बाल गोपालों के साथ गोवर्धन की छाया में मनोहारी लीलाएं करेंगे।
हम धन्य हुए प्रभु, हम धन्य हुए।
इतना ही नहीं हनुमान, पूरे 7 दिनों तक मैं उन्हें अपनी उंगली पर धारण करूंगा।
आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। मैं अभी पर्वतराज गोवर्धन को सूचना देता हूँ।
तब अति प्रसन्न मुद्रा में अंजनी पुत्र हनुमान पर्वतराज गोवर्धन के पास आए और उन्हें प्रभु की असीम कृपा की सूचना दी। गिरिराज श्री राम की कृपा जानकर आनंद से भर गए। उन्हें लगा कि आज उनका पृथ्वी पर जन्म लेना सार्थक हो गया। उन्होंने अगले युग की प्रतीक्षा में उसी क्षण से ब्रज को ही अपना पावन धाम मान लिया और तब हनुमान गिरिराज से विदा लेकर श्री राम के पास लौट आए और श्री राम को साथ लेकर समस्त वानर सैनिकों के साथ समुद्र पर बने सेतु का निरीक्षण करने पहुंचे।
कितने आश्चर्य की बात है ना हनुमान, कितने बड़े बड़े पत्थर पानी की सतह पर किस प्रकार तैर रहे हैं।
ये तो आपके नाम की महिमा है प्रभु। हाँ श्री राम, नल और नील ने समुद्र में डालने से पहले सारे पत्थरों पर आपका नाम लिखा है।
इसका अर्थ हुआ कि यदि मैं पत्थर डालूं तो वो तैरने लगेंगे।
अवश्य प्रभु।
तो चलो हनुमान एक पत्थर लाओ, अभी देखते हैं।
अरे ये क्या, ये तो डूब गया।
ये क्या हुआ प्रभु, कैसा चमत्कार है ये?
क्षमा करे प्रभु, पर ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। आप तो सबको सहारा देने वाले हैं, जब आप ही किसी को अपने हाथों से छोड़ देंगे तो उसे कौन बचा सकेगा, वो तो डूब ही जाएगा ना प्रभु।
बोलो प्रभु श्री राम की।
जय।
तो श्री राम
अब लंका पहुंचने में विलंब क्यों?
यदि आप आदेश दें तो हम सागर पार उतरने की तैयारी करें।
हाँ वानरराज, कल से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो रहा है, सूर्यदेव उच्च राशि में पहुंच जाएंगे, तब हम लंका के लिए प्रस्थान करेंगे। किंतु प्रस्थान के पूर्व हमें भगवान शिव का पूजन करना होगा।
हाँ भैया, जिन महादेव शिव की साधना करके रावण को इतना गर्व हो गया है, उसका अंत करने के लिए हमें उन्हीं भगवान शिव की साधना करनी चाहिए।
इसके लिए पहले हमें भगवान शिव की स्थापना करनी होगी, स्थापना के बाद ही पूजन हो सकता है।
यहां तो कोई शिवलिंग भी नहीं है, फिर स्थापना कैसे होगी?
प्रभु, यदि आप हमें आदेश दें तो मैं भगवान शिव से उनका प्रतीक रूप मांग कर ले आऊं।
तुम्हारे उत्साह और पराक्रम की कोई बराबरी नहीं हनुमान, परंतु कैलाश यहां से बहुत दूर है। शुभ मुहूर्त के पहले वहां से शिवलिंग लेकर आना असंभव है।
यदि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो असंभव संभव हो जाएगा प्रभु।
हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, बस आप आदेश दें।
ठीक है हनुमान, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, किंतु शुभ मुहूर्त के समय का ध्यान रखना।
जय श्री राम।
प्रभु श्री राम की आज्ञा पाते ही महावीर हनुमान कैलाश पर्वत की ओर उड़ चले। पवन पुत्र को अपनी गति पर पूरा विश्वास, उन्होंने सोच लिया कि वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलकर उनसे ही उनका प्रतीक चिन्ह मांगेंगे। किंतु उन्हें क्या पता था कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को ढूंढना इतना आसान नहीं है।
तो ये है कैलाश, हे ईश्वर, कितना विशाल है ये पर्वत। पूरे पर्वत ने बर्फ की कैसी विशाल चादर ओढ़ रखी है। पर आप चिंता न करें प्रभु, मैं अभी शिवलिंग लेकर आता हूं, और उसके लिए पहले मैं महादेव को ढूंढता हूं। महादेव है कहां? किस कंदरा में बैठे साधना कर रहे हैं?
जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप कहां हैं भगवान? कहां हैं आप? जय महादेव। अरे भगवान शिव, आप मौन क्यों हैं? क्या आप मुझे नहीं सुन रहे हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ, आप कहां हैं भोलेनाथ?
अब क्या करूं, यहां तो भोलेनाथ का कोई कण भी नहीं दिख रहा। मेरी लाज रखिए प्रभु श्री राम, कहीं आपको दिया मेरा वचन छूटा न पड़ जाए। अरे हाँ, यदि मैं पूरे कैलाश को ही उठाकर प्रभु के पास ले चलूं तो सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। किंतु प्रभु की आज्ञा के बिना मैं ये कैसे कर सकता हूं?
लंकेश रावण की, काल जयी लंकापति की, लंकेश रावण की।
शांत शांत शांत, कहो मंत्री प्रहस्त, क्या सूचना है?
सूचना शुभ नहीं है महाराज, असंभव को संभव कर दिया है उस राम ने। सूचना है कि राम की वानर सेना ने समुद्र पे सेतु बना दिया है।
क्या? समुद्र पर सेतु?
हाँ महाराज।
त्रिलोक जयी लंकेश रावण से हास्य कर रहे हो प्रहस्त? वानर जैसे तुच्छ प्राणियों ने विशाल समुद्र बांध दिया।
सुन के विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था लंकेश, किंतु हमारे दूतों की सूचना कभी झूठी नहीं हो सकती। हमें यहां तक पता चला है कि वो वनवासी राम महादेव शिव के पूजन की तैयारी में लगा है।
वो वनवासी महादेव का पूजन कर रहा है? नहीं, महादेव हमारे विरुद्ध उसके सहायक नहीं हो सकते। जिन महादेव के चरणों में हमने शीश काटकर चढ़ाए हैं वो मेरे विरुद्ध उस कायर कुमार की सहायता करेंगे।
किंतु लंकेश, अभी तक तो उन्होंने उसकी सहायता ही की है।
झूठ है ये। सच वो है जो हमने कहा है। जाओ, संपूर्ण लंका को निर्भय रहने का संदेश दो। संसार की कोई शक्ति रावण का सामना नहीं कर सकती।
हम जानते हैं लंकेश, किंतु नीति के अनुसार शत्रु कभी छोटा नहीं होता।
नीति तुम हमें बताओगे प्रहस? यदि तुम्हें राम से इतना ही भय है तो शुक और सारण को भेजो। हमारे वो विश्वासी दूत उन कुमारों की सूचनाएं लेकर आएंगे।
लंकापति के विशेष दूत शुक और सारण अभी और इसी क्षण उपस्थित हो।
आदेश दे महाराज।
शुक और सारण, हमें वनवासी राम की युद्ध योजना की समस्त सूचनाएं चाहिए।
आपका आदेश शिरोधार्य लंकापति, हम अभी प्रस्थान करते हैं।
वानर राज सुग्रीव, हनुमान तो अभी तक नहीं आया। शिवलिंग की स्थापना का समय बीतता जा रहा है।
पता नहीं इतना विलंब क्यों हुआ प्रभु। यदि मुहूर्त के पूर्व हनुमान नहीं आ सके तो
हमें कुछ और सोचना होगा। वानर राज, हनुमान के लिए हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।
परंतु भैया, शिवलिंग के बिना हम स्थापना कैसे कर सकते हैं?
मैं समुद्र की बालू से ही शिवलिंग बनाऊंगा लक्ष्मण। प्राण प्रतिष्ठा करके हम उसका पूजन करेंगे। वानराज, आप सभी को यहां बुला लें जिससे स्थापना का कार्य आरंभ किया जा सके।
देखा सारण, यही तो है राम की सेना। जहां देखो वानर ही वानर है। अब शुक और सारण से ये नहीं बच सकते। आओ, हम यहाँ छुपकर इनकी सारी क्रियाएं देखते हैं।
पर शुक, ये सब समुद्र तट पर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं?
पता नहीं क्या करने वाले हैं।
चलो वही चलकर देख लेते हैं।
पर यदि हम पहचान में आ गए तो मारे जाएंगे। वैसे भी ये वानर किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते।
तो हम भी महामायावी है, वानरों के बीच वानर के रूप में ही जाएंगे और उनका सारा रहस्य जान लेंगे।
सुख और सारण बहुत चतुर थे। वो माया से वानर रूप धारण कर श्री राम की सेना में शामिल हो गए। पर वो ये नहीं जानते थे कि वानरों जैसा दिखने पर भी उनका स्वभाव वानरों से भिन्न था। इस कारण कुछ वानरों को उन पर संदेह हुआ और शीघ्र ही उनकी सूचना वानर राज सुग्रीव के पास भी पहुंच गई। वानर राज तुरंत समझ गए कि हो न हो ये वानर के रूप में कोई और ही प्राणी है।
दो भेदी लंकेश के धरे कपट कपिवे, पर वानर की दृष्टि में भेद रहा ना शेष। रामायण
मैं काल हूं। श्री राम की सेना समुद्र सेतु के सामने तैयार खड़ी थी। पर भला शिव पूजा से पहले श्री राम अपनी यात्रा कैसे आरंभ कर सकते थे? और शिव पूजा के लिए भगवान शिव की स्थापना होना आवश्यक थी, जबकि स्थापना के लिए मूर्ति लेने गए हनुमान अभी तक वापस नहीं लौटे थे। इधर पूजन का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था और उधर पवन पुत्र हनुमान महादेव शिव को अपनी साधना से प्रसन्न करने में लगे थे। ऐसी घड़ी में श्री राम बालुका से शिव मूर्ति के निर्माण का विचार करने के बाद भी सोच में डूबे थे कि तभी ऋषि महर्षियों ने उनसे और विलंब न करने का निवेदन किया।
क्या विचार कर रहे हैं श्री राम, शुभ मुहूर्त बीतने में केवल दो घड़ी ही शेष है। ऐसे में पवन पुत्र हनुमान की प्रतीक्षा में समय बिताना ठीक नहीं है। समुद्र की अति पवित्र बालुका से शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना करें, जिससे पूजा का कार्य आरंभ हो सके। श्री राम,
आपका सोचना उचित है ऋषिवर। एक बार समय बीत गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, और फिर हमारी आगे की योजना का क्या होगा?
हम आप सभी के विचारों से सहमत हैं। शिवलिंग की स्थापना का कार्य आरंभ किया जाए।
जय श्री राम।
ये क्या प्रभु, आपने तो शिव पूजन आरंभ भी कर दिया, अब इस स्वयं भगवान शिव द्वारा दिए गए शिवलिंग का क्या होगा?
तुमने शिवलिंग ले आने में बहुत देर कर दिया हनुमान।
हाँ हनुमान, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था, इसीलिए ऋषि महर्षियों के आग्रह पर प्रभु श्री राम ने महादेव की स्थापना की और पूजा का कार्य आरंभ कर दिया।
परंतु वानरराज, मैंने जानबूझकर विलंब तो नहीं किया, मैं तो वायु की गति से कैलाश पर्वत पर गया। वहां भगवान शिव से मिलने के लिए मुझे घोर तपस्या करनी पड़ी।
निराश मत हो हनुमान, तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं होगा, प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
प्रभु की कृपा तो सदैव बनी रहती है महाराज सुग्रीव, किंतु मैं अब इस उत्तम शिवलिंग का क्या करूं?
हनुमान, ये तो अब श्री राम ही बताएंगे, पूजा समाप्त होने के बाद तुम स्वयं उनसे ही पूछ लेना।
मुझे बहुत डर लग रहा है सारन, वानरों की इतनी विशाल सेना मैंने पहले कभी नहीं देखी।
इसमें डरने की क्या बात है, हमें इनसे युद्ध थोड़ी ही करना है।
हाँ, पर उधर देखो, वो जो गोल मटोल वानर दिखाई दे रहा है वो कब से हमें ही घूर रहा है।
तो क्या हुआ, हम तो वानर रूप में ही है ना, यदि वो पूछेंगे तो हम बोल देंगे जय श्री राम।
वो देख सारन, वो विशाल काय वानर हमारी ओर ही आ रहा है, चलो भाग निकलते हैं।
नहीं मूर्ख, भागने पर वो निश्चित ही हमें पहचान लेंगे, चुपचाप बैठे रहो, इनकी पूजा समाप्त होने वाली है।
महादेव शिव की
जय,
देवाधिदेव शिव की
जय।
लक्ष्मण, पवन कुमार, हनुमान कहाँ है?
मैं भी यही पूछने वाला था भैया, सब लोग तो यहाँ हैं, पर हनुमान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे।
हनुमान बहुत दुखी हैं श्री राम, कह रहे थे कैलाश जाकर शिवलिंग लाने का उनका श्रम व्यर्थ हो गया। परंतु वो है कहाँ? वो देखिए, समुद्र के किनारे एकांत में बैठे हैं।
ये तो बालकों जैसा रूठ गया है, मैं जाकर देखता हूं।
हे भोलेनाथ, वही वानर। अरे सारन, अब तो भाग चलो, ये वही हनुमान है जिसने हमारी लंका जलाई थी। ये बहुत शक्तिशाली है, इसकी एक मुष्टिका में हम खूंटे की तरह धरती में गड़ जाएंगे।
तुम बहुत डरते हो शुक, लंकेश के सामने तो बड़ी वीरता दिखा रहे थे, अब हनुमान का नाम सुनते ही तुम्हारे प्राण निकल गए। समझते क्यों नहीं कि इतने सारे वानरों में हमें कोई पहचान नहीं सकेगा।
तुम कह तो ठीक रहे हो, पर मेरे तो प्राण सूख रहे हैं। भय हरो नाथ, जय लंकेश, जय जय लंकेश, जय लंकेश, जय जय लंकेश।
रावण के गुप्तचर सुख और सारण हनुमान का नाम सुनकर ही कांप गए। सारण सुख को साहस से डटे रहने की सीख अवश्य दे रहा था, पर सच्चाई ये थी कि वो भी किसी पतझड़ के सूखे पत्ते जैसे कांप रहा था। उधर श्री राम रूठे हनुमान को मनाने के लिए उनके पास पहुंचे।
हनुमान,
क्षमा करें प्रभु, पर मैं तो आपके आदेश से ही कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लेने गया था ना।
इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है पवन कुमार। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लाए शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए तो जाओ, बालू से बनाए गए शिवलिंग को हटाकर भगवान शिव के दिए गए शिवलिंग की स्थापना कर दो। अब शांत क्यों हनुमान, जाओ जाकर शिवलिंग की स्थापना करो।
ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम।
अरे ये क्या सारण, राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की उसे हनुमान उखाड़ रहा है।
लगता है राम से इसका झगड़ा हुआ, गुस्से में ऐसा कर रहा है।
क्षमा करें प्रभु, यदि आपका आदेश न होता तो मैं आपका बनाया ये शिवलिंग कभी न तोड़ता। चलो बालू के शिवलिंग, मुझे क्षमा करना।
परंतु बालू का बना ये शिवलिंग उससे टस से मस नहीं हो पा रहा है।
पर लंका में तो इसकी शक्ति का हाहाकार मच गया था।
चलो शिवलिंग उखाड़ने में हम इसकी सहायता करें। इसका विश्वास पात्र बनकर हम इसके राम के सारे रहस्य जान सकते हैं।
नहीं नहीं, तुझे जाना है तो जा, मैं तो उसकी गधे की चोट अभी भुला नहीं हूँ।
जय श्री राम, जय श्री राम।
अरे तुम तो पसीने पसीने हो गए हनुमान। लगता है प्रभु श्री राम की कृपा से साधारण बालू का बना ये शिवलिंग वज्र का हो गया है।
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है महाराज।
क्या हुआ पवन पुत्र?
मुझे क्षमा करें प्रभु, इस शिवलिंग को तो मैं हिला भी नहीं पा रहा हूं। जाने कौन सी शक्ति काम आ रही है जिसके सामने मेरा भी बल।
ये आस्था और विश्वास की शक्ति है पवन पुत्र। शिवलिंग तो बस एक प्रतीक है। ये बालुका से बना हूं या किसी चट्टान से, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता।
क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरा भ्रम दूर हो गया प्रभु। मैं मूर्ख अज्ञानी कैलाश से लाए शिवलिंग को उत्तम मानने लगा था। इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दे प्रभु।
नहीं हनुमान, तुमने कोई भूल नहीं की, बल्कि मुझे तो प्रसन्नता है कि तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया। अब तुम अपने लाए हुए महादेव के दिए शिवलिंग को यहीं स्थापित कर दो। ये हनुमदेश्वर के नाम से जाना जाएगा और युगों युगों तक इसकी पूजा के बाद ही मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा की जाएगी और इस स्थान को रामेश्वरम के नाम से जाना जाएगा।
आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय।
महाराज लंकेश की।
कौन है यह दुस्साहसी? प्रभु श्री राम की सेना में कौन है जिसने शत्रु की जयकार की?
यदि लंकेश की जय जयकार करने वाला स्वयं प्रभु श्री राम के सामने नहीं आया तो हम उसे सामने लाएंगे। सब चुप क्यों हैं? हम जानते हैं कि वो कौन है जिसने शत्रु की जय जयकार की है। हनुमान पकड़ो, पकड़ो उन्हें।
नहीं, छोड़ दो मुझे। मत मारो मुझे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। मारो,
मारो,
मारो इन्हें,
मारो इन्हें।
वानर वेश में ये राक्षस है।
रक्षपति विभीषण, क्या आप इन्हें जानते हैं?
हाँ, मैं इन्हें भली भांति जानता हूँ।
लंकापति रावण के भेजे हुए दोनों गुप्तचर सुख और सारण श्री राम के वानर सैनिकों द्वारा पकड़े गए। पवन पुत्र हनुमान ने उनकी ऐसी दुर्गति की कि यदि श्री राम बीच में नहीं आते तो वो नहीं बच पाते। श्री राम को अपने प्राणों के रक्षक मानकर सुख और सारण कटे पेड़ की तरह उनके पैरों पर गिर पड़े।
दया करे संकट हरे, सदा उबारे राम चरण की ऐसन माया, राम चरण की ऐसन माया, सुफल करे सबका।
पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन।